ओम शांति। आप सभी का स्वागत है तीव्र पुरुषार्थ की इस कड़ी में। चलेंगे 2-3 मिनट के लिए, हम सभी बैठेंगे। अपने मन और बुद्धि को बिल्कुल शांत एकाग्र करते हुए जब मन की भावनाएं टिकी हुई हों, बुद्धि की भागदौड़ शांत हो, तो जैसे ठहरे पानी में प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, टिके हुए मन बुद्धि में अपना स्वरूप, समय, भगवान सब स्पष्ट अनुभव होता है। मन में कोई भी हलचल हो, चाहे परिस्थितियों की, चाहे कर्मों की, थोड़ी देर के लिए उसे भगवान के अर्पण करके बैठें। बोझ अपने सिर पर उठाना छोड़ दें। भगवान आया ही है तुम्हें हल्के बनाने। चेक करेंगे मेरे पुरुषार्थ की गति से क्या मैं संतुष्ट हूं। क्या भगवान से जितना मुझे प्राप्त करना चाहिए मैं उतना प्राप्त कर रही हूं। कौन कौन सी बाधाएं हैं मेरे पुरुषार्थ में, कौन कौन से मुख्य कर्म बंधन हैं, क्या अब अंतिम वापिस घर चलने की लगन अग्नि के रूप में लगी है। ओम शांति। प्यारे मीठे रूहानी भाई बहनों को तपोवन की तपस्या भूमि से आज के सेशन में बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी भाई बहन बहुत लगन के साथ कोरोना काल को सफल कर रहे हैं और ड्रामा ने इसी मकसद के लिए ही ये दिया था। हर सीन में हम ब्राह्मण बच्चों के लिए कल्याण ही समाया होता है। तो अभी और जितने भी दिन ये प्रिपरेटरी डेज फाइनल इम्तिहान से पहले के दिन जो हमें मिले हैं, इन दिनों का और भी भरपूर इस्तेमाल करते चलें, क्योंकि ऐसी कमाई के दिन फिर दोबारा आने वाले नहीं हैं। जैसे आदिकाल की तपस्या के दिन 14 साल वो तपस्या के फिर कभी लौट कर नहीं आए, जो वक्त बीत जाता है वो लौट कर नहीं आता है। जो वक्त पर वक्त की कीमत जान लेते हैं, वक्त उन्हें बहुत ऊपर पहुंचा देता है और यही वक्त उन्हें नष्ट कर देता है जो वक्त को नष्ट करते हैं। इसलिए हम सभी तो पद्मा पद्म सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो वक्त पर परमात्मा ने हमें जागृत कर दिया है। तो हम चर्चा कर रहे हैं, कल भी चर्चा की, कि अपनी गहरी चेकिंग किस प्रकार से हमको करनी है। आप सभी ने भी अवश्य ही कुछ चिंतन इस पर किया होगा और थोड़ा कुछ गहराई में जाने का अवसर मिला होगा आपको। कल कुछ बातें बताई गई थी कि चेकिंग के लिए क्या जरूरी है। हमेशा चेक करो, क्या योगी वाली स्थिरता है आपके अंदर, अगर योगी वाली स्थिरता नहीं है तो चेकिंग करेक्ट नहीं हो सकती है। दुनिया में भी आपने देखा होगा जब कोई करेक्ट चेकिंग करनी होती है, चाहे वो किसी लेबोरेटरी में है या एयरपोर्ट पर है, तो वहां पर अटेंशन, एकाग्रता पूरी देनी होती है, गंभीरता भी होती है, जोश नहीं होता है, होश होता है। ठीक इसी प्रकार से चेकिंग के समय ये हमें आदत होनी चाहिए कि हम पूरी तरह से गंभीर हों, सिंसियर हों, ताकि चेकिंग में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और वास्तव में देखा जाए तो हमारे पार्ट्स में जो भी हमारे रोल हैं, हर सोल के जो रोल हैं, उन रोल्स में सफलता या असफलता का होना, ये पार्ट जो अलग अलग हुए हैं सभी के, इसमें सबसे बड़ा कारण चेकिंग का ही है। चेकिंग में दो चीजें आती हैं, परख शक्ति और निर्णय शक्ति। तो पहले परखना होता है, फिर परखने के आधार पर निर्णय लेना होता है। आप देखिए जिंदगी में जितने करेक्ट निर्णय हम लेते हैं उतना हम सफलता की ओर चले जाते हैं। और आज 99% लोगों के असफल होने का कारण ही है क्योंकि उनके 99% निर्णय गलत होते हैं। बड़ा अद्भुत लगेगा आपको ये सुनकर, लेकिन दुनिया में 99% से भी ज्यादा लोग असफल जा रहे हैं, असंतुष्ट जा रहे हैं। असंतुष्ट माना असफल, फिर भले ही उन्होंने कोठियां बंगले गाड़ियां बना लिए, पोस्ट पोजीशन प्राप्त कर लिए। बिल स्टीव जॉब्स ने मृत्युशैया पर लेटे हुए यही कहा कि मैंने वो काम किया नहीं। ये तो लेटेस्ट एग्जांपल है। सिकंदर का उदाहरण तो हम बहुत पुराना देते हैं कि उसने कहा मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना ताकि दुनिया को पता लग जाए कि सिकंदर महान भी खाली हाथ गया था। आज लेटेस्ट है ये। और अभी जो चारों तरफ घटनाएं घट रही है उसमें देख लीजिए, दौलत वाले असंतुष्ट। तो स्टीव जॉब्स ने भी यही कहा कि काश मैं कुछ और चीजों पे काम कर लेता तो आज असंतुष्ट नहीं होता इस डेथ बेड पर पड़े हुए आईसीयू में। तो निर्णय भले देखिए, एक समय अभी कुछ ही सालों पहले की बात है, कितना नाम था स्टीव जॉब्स कि उन्होंने इतनी सफलता पाई, दुनिया के लिए इतनी वंडरफुल चीजें बनाई उन्होंने। आज उनके द्वारा बनाई चीजों के माध्यम से ही हम बात कर रहे हैं। नो डाउट इस चीज के लिए उनको अप्रिशिएट करना है, उनकी मेहनत को सैल्यूट करना है, लेकिन बात है व्यक्तिगत संतुष्टता की कि संसार में कुछ भी किया लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से हम संतुष्ट नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हमारे निर्णय गलत हैं, कहीं चेकिंग और डिस्क्रिमिनेशन पावर एंड डिसीजन पावर में गड़बड़ हो रही है। परख शक्ति धोखा खा रही, निर्णय शक्ति धोखा खा रही। वरना निर्णय शक्ति का तो उदाहरण ही वो दिया जाता है जब दोनों पलड़े बैलेंस हो, बैलेंस माइंड ही करेक्ट निर्णय शक्ति का उदाहरण है। तो मीठे भाई बहनों, चेकिंग के समय कोई हलचल नहीं, कोई जोश नहीं, ना प्रेम का जोश, ना नेगेटिव परिस्थितियों के द्वारा पैदा किया जो आवेश। चेकिंग के समय टोटल डिटैच, ठीक ऐसे जैसे हम दूसरों की चेकिंग करते हैं। चेकिंग के समय मस्तक में जज बनकर बैठना है, खुद को खुद से अलग करके बैठना है, तब खुद को सही जज कर पाएंगे। नहीं तो खुद के वकील बन जाते हैं, जहां जज बनना होता है वहां वकील बन जाते हैं। जज दोनों पक्षों की सुनता है, निष्पक्ष भाव से सुनता है, और दोनों के सुनकर तब एक्यूरेट डिसीजन लेता है। और वकील एक पक्षीय होता है, वो सिर्फ तर्क देता है अपने पक्ष को बचाने के लिए। और आजकल उसमें देखा भी है, उसके लिए उसे झूठ का सहारा भी लेना पड़े, धोखेबाजी का सहारा भी लेना पड़े तो भी लेता है। हमारा मन भी ऐसा ही करता है। जल्दबाजी में बहुत से पक्ष, बहुत सी गलत बातों को अपने पक्ष में बोल देता है, भावनाओं को मिस इंटरप्रेट कर लेता है, गलत समझ लेता है भावनाओं को। कल बताया था हमने आपको, मेरा तो शिव बाबा दूसरा ना कोई, बहुत अच्छा लगता है इस लोग, ये कहना बहुत अच्छा लगता है कि मेरा तो बाबा के अलावा कोई नहीं है। जब बाबा कहते हैं कि बाप से कितना प्यार है तो 100% बोलने में बड़ा आनंद आता है, ऊंचा हाथ उठाने में मजा आ जाता है। लेकिन जिनका भगवान से 100% प्यार है उन्हें स्थिति की हलचल की दिक्कतें क्यों हैं? उनके मन विचलित क्यों हैं? दुविधाएं क्यों हैं? चिंताएं क्यों हैं? वास्तव में वो प्रेम के जोश में कही गई बात होती है। इसलिए कहा, जो चेकिंग का टॉपिक चल रहा, ये बाबा की श्रीमत है कि अपनी चेकिंग की मशीनरी को ठीक करो। और बाबा की मुरलियों के महावाक्य हम आपको बता देते हैं, जब जब वाणियां चलती हैं आपने नोट किया होगा ये चीज, या अभी नोट कीजिएगा जब हम बताएंगे कि जब बाबा हाथ उठवाते हैं, अच्छा हाथ उठाओ, जो जिनका बाप का प्यार ज्यादा या बच्चों का प्यार ज्यादा, अच्छा बच्चों का जिनका प्यार 100% वो हाथ उठाओ, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस वक्त जब भगवान स्वयं पूछ रहा है सामने, वो घड़ी अलग होती है, वो माहौल अलग होता है, वो ऑरा अलग होता है, तो उस ऑरा के प्रभाव में जैसे टेम्परेरी किसी संगठन पिकनिक पार्टी शादी ब्याह में टेम्परेरी खुशी का ऑरा होता है, तो उसमें जोश आवेश में बहुत सी चीजें भूल जाता है इंसान। तो ये एक ऑरा था, स्पिरिचुअलिटी का ऑरा है, भगवान पूछ रहा है, और उस वक्त टेम्परेरली रियल हार्ट जागृत होता है। तो कहते हैं 100% प्यार है, लेकिन बाबा उससे अगला महावाक्य जो उच्चारण करते हैं वो नोट करने लायक है। सभी हाथ उठाओ, फिर कहते हैं कैमरे वाले इनकी तरफ कैमरा घुमाओ, इनका फोटो ले लेना, फिर जब ये शिकायत करेंगे या जब कोई बात आएगी तो फिर इनको दिखाना। कई बार बाबा कहता है हाथ उठाओ, हाथ तो उठवाता है, हाथ उठाया, फिर पूछा बाबा ने दिल का हाथ उठाया? कई बार ऐसा हुआ, उठाया दिल का, दिल का, मन वाला हाथ उठाया? वास्तव में ये जो रिपीट किया बाबा ने, ये बड़ी सूक्ष्म चेकिंग वाले ही कैच कर सकते हैं। ये केवल मुझे के लिए नहीं बोला है, ये बोला है हे आत्मा तू रियलाइज कर सामने कौन बैठा है और तू बोल क्या रही। आप बताएंगे जिसका 100% प्यार हो उसकी स्थिति कैसी होगी, लिखिए। जिसका 100% प्यार हो उसकी स्थिति कैसी होगी। निशानियां होती हैं प्यार की, इश्क ते मुश्क छिपाए नहीं हो छिप दे। 100% प्यार है और प्यार की बातें ना निकलें तुम्हारे मन से मुख से। 100% प्यार है और तुम दुनिया भूले ना हो। 100% प्यार है और तुम नशे में डूबे ना हो। तो निशानियां होती हैं प्यार की भी। एक रस, अचल, अडोल, ऊंची, स्टेबल, हलचल रहित, दुविधा रहित, भय रहित, योग युक्त, पावरफुल। वाह, देखिए डाटा तो अंदर है राइट, लेकिन परिस्थिति के टाइम ये निकलता नहीं है। अब अगर अगला प्रश्न ये पूछे, केवल वो लिखना, केवल अब वो टाइप करना, बाकी टाइप स्टॉप कर देना, सच्चे बच्चे हो बाबा के, क्योंकि चेकिंग की क्लास चल रही है। यहां दिखाने के लिए नहीं, हम तो आपको रूबरू जानते भी नहीं हैं। हमारे सामने यहां चैट पर दिखाने के लिए लिख करके फायदा नहीं, नुकसान है, वो भी अहम है, सूक्ष्म। मत लिखिएगा, केवल वो लिखे। अब ये वाली चैट कृपया स्टॉप कर दें, देखिएगा चेकिंग, अभी ये वाली चैट स्टॉप कर दें। देख लिया हमने, सभी ने बहुत अच्छा लिखा है। अब जो भी ये बातें आई हैं, अब आप में से कोई लिखे जो समझता है कि मैं ऐसा, जो ये लिख रहे हैं सभी, सब ठीक लिख रहे हैं, ये इसमें कोई गलती नहीं है। जो समझते हैं कि मैं ऐसा बन गई हूं, वो है 100% प्यार की निशानी। आपने लिखा है, देखिए आपने ही बताया 100% प्यार की निशानी। अब वो लिखे केवल, बाकी मत लिखें, एक्स्ट्रा बात कुछ ना लिखें। कृपया ज्ञान मत, चैट में ज्ञान मत डालें। सुनिए आप जो सुनने के लिए बैठे हैं, केवल वो लिखे जो समझता है कि मेरी ऐसी स्थिति बन गई, अपने हिसाब से बन गई, उसे नहीं कह रहे हैं। उसकी निशानियां देखना, फिर उस आत्मा की निशानियां क्या होती हैं और उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, वो सब सोच करके तो लिखना स्थिति बन गई है। आपको लिखना है मेरी स्थिति ऐसी बन गई है। फिर हम आपके दर्शन के लिए आएंगे, सभी आपका एड्रेस लेंगे, हम दर्शन करने आएंगे आपके, और बहुत हार मालाएं डालेंगे ऐसे सौभाग्यशाली आत्माओं। ये नहीं अभी बोला ना, देखिए नो मत लिखिए, सिर्फ वो लिखिए कि मेरी स्थिति बन गई है, मैं दर्शनीय मुहूर्त बन गई हूं, आप मेरे दर्शन के लिए आ सकते हैं। क्योंकि नेचुरली जिसका 100% प्यार हो गया है, जो अचल अडोल हो गया है, वो दर्शनीय मुहूर्त है। देखिए बात ना समझ नहीं आती, हम नहीं वाला नहीं बोल रहे, आप सिर्फ उनको लिखने दीजिए जिनकी बन गई है। देखा, हम जो चेकिंग की बात बता रहे ना, एक ये भी आराम से सुनो बातें, बड़े आराम से सुनिए। ये भी बेचैनी है ना, तो हमने ये पूछा 90% बन गई या 80%। क्यों बता रहे आप 90%? हमने कहा ऐसी 100% की बात चली, खुद को 90% नंबर दे रहे सरोज बहन। नो, अभी चेकिंग का क्लास चल रहा है ना, और बात चल रही है वैसी, बाद में पूछेंगे परसेंटेज। ठीक है, समझ में आया बात? चेकिंग का तरीका समझ में आया? आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा, ये चेकिंग की ना, देखिए कितना अच्छा। हीरा लाल जी शायद बोल रहे हैं कि मैं एक रस बन गया हूं, बट एनीवेज बात थी सूक्ष्म चेकिंग की ओर जाना है, परसेंटेज में है अभी हम, सूक्ष्म चेकिंग की ओर जाइए। आराम से बैठकर चेक कीजिए। देवी देवता बनना, बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है, उसके लिए बहुत गहरी चेकिंग चाहिए। मेरा प्यार है तो कितना है, फिर उसको सुधारें कैसे, और अच्छा कैसे बनाएं। प्यार भगवान से है तो क्या फिर किसी और से मोह हो सकता है, वस्तु से या फिर व्यक्ति से? किसी से मोह नहीं हो सकता। डिटैच होकर पाठ बजाना आ जाएगा, रहेंगे बीच में। देखिए अभी हमारी आदरणीय दादी जी गए, कितने बड़े परिवार की मुखिया थी वो, एग्जाम्पल हमारे बीच में हैं, केवल सीखना है हमको। अभी भी दादी रतन मोहिनी जी हैं, दादी प्रकाशमणि जी थे, दादी जिन दादियों को देखा पुरानों ने, दादी जानकी अभी गए हैं, सबके बीच होते भी जिनके साथ पाठ बजा रहे उनसे भी डिटैच, पर कर्म करने की बड़ी अद्भुत विधि सीख ली, अपना ऑरा इतना पावरफुल बना लिया, अपने चारों तरफ बदल लिया वायुमंडल। हमें वो मेहनत करनी है। अभी हम चेकिंग पे चल रहे हैं। राइट चेकिंग जो है ये आपको सही दिशा में ले जाएगी, भले आज हम वहां नहीं हैं, बट सही चेकिंग से स्टार्ट करेंगे तो तीव्र गति प्राप्त कर पाएंगे। दिल साफ मुराद हासिल, ये ध्यान रखिएगा, दो तीन स्लोगन लिख लीजिएगा, इसे प्रिंट कर लीजिएगा यहां भी और यहां भी। दिल साफ मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहेब राजी, हिम्मते बच्चे मददे खुदा। ये नियम जिंदगी बदल देते हैं। ठीक है, तो साफ दिल करते जाओ, बिल्कुल साफ दिल। और साफ दिल में एक बात आती है, जैसे प्यार की चेकिंग की बात चल रही है अभी, साफ दिल की चेकिंग, बाबा के सामने बैठो। चलिए, आप सभी के सामने बाबा की तस्वीर होगी, नहीं तो आंखों में तो छवि होगी ही उसकी। थोड़ी देर, दो तीन मिनट टिक कर बैठ जाओ। बाबा की नजरों में देखो, और बाबा से अंदर के दिल से, ऊपर से नहीं, अंदर से बाबा को बोलो, बाबा मैं तेरी। लेकिन ध्यान देना, बाबा केवल सच्ची बात ही पकड़ता है। अगर झूठ बोलोगे तो बाबा उसे पकड़ेगा ही नहीं। वर्षों शक्ति नहीं मिलती इसी कारण से। वर्षों बाबा को अपना कहने के बाद भी शक्ति नहीं मिलती, क्योंकि मिक्सचर होता है। शक्ति भी मिक्सचर वाली मिलती है। बाबा को बोलो मैं तेरी। इस मैं तेरी में पूरी सच्चाई होनी चाहिए। मैं तेरी मतलब फिर मैं किसी की नहीं, फिर मैं किसी की नहीं, ना किसी इंसान की, देहधारी की, ना किसी वस्तु की, ना कोई मेरा, बस मैं आत्मा तेरी और तू मेरा। हम दोनों के प्रेम में तीसरा कोई नहीं। 2 मिनट पूरी सच्चाई के साथ अपने प्रेम को महसूस करो, प्रेम की क्वालिटी को महसूस करो। जब ऐसे एकांत में बैठेंगे, और बैठना पड़ेगा, जब बैठेंगे तो धीरे धीरे आपको अपनी सूक्ष्म भावनाओं की कमजोरियां पता लगेंगी और उसे स्पष्ट करने, साफ करने की विधि भी बाबा बताएंगे। लगातार कुछ घंटे बैठना कभी इस अभ्यास में, बस एक ही मैं तेरी। आपको केवल बाबा को विश्वास दिलाना है या अपने मन को भी पूरा विश्वास दिलाना है, मन को, दिल को, दिमाग को नहीं, दिल को विश्वास दिलाना है कि बस तेरी हो गई। जिस दिन ये विश्वास तुम्हारे दिल को आ गया, भगवान तो उसी दिन कर लेगा, पर तुम समस्या मुक्त हो जाओ। कहीं प्रश्न पूछते हैं ना, इसका जवाब दे दीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। हम सारी समस्याओं का जवाब एक शब्द, एक लाइन में दे रहे हैं कि तुम काम समस्याओं पर नहीं करो, तुम प्रेम पर काम करो, तुम्हारे काम भगवान बनाएगा। भगवान को समझा नहीं हमने। हम मेजॉरिटी भगवान को जैसे भक्ति में करते थे, केवल काम बनाने की एक साधन, एक मशीन, काम बनाने की एक चीज समझ लेते हैं। मंदिर गए, अपने काम की मन्नत मांगी, काम बना देना, मैं प्रसाद चढ़ा दूंगी, काम नहीं बना तो प्रसाद का प्रोग्राम कैंसिल। ऐसा आपने देखा नहीं होगा कि किसी के काम नहीं बने फिर भी वो भोग जो मन्नत मांगी थी फिर भी वो भोग लगाया हो, ऐसे आपने देखे नहीं होंगे केस, कोई कोई देखा होगा। सच्चाई वाले होते हैं कुछ, क्योंकि बिजनेस था, काम बना दोगे तो मैं मन्नत, आप मेरे काम बना दो फिर मैं आपको मंदिर में ही नहला धुला कर बिठा दूंगी, फिर मैं बिजी हो जाऊंगी अपने कारोबार में, फिर जब काम पड़ेगा फिर आऊंगी, फिर बना देना। बाबा के प्यार के साथ ऐसा नहीं करना है, उसे काम बनाने की मशीन नहीं, उसके पास वो बाहें पसारे खड़ा है, वो प्रेम करने की चीज है, आप उसे प्रेम करके देखो, जो तुम्हारे लिए जरूरी होगा, ये जरूरी नहीं जो तुम मांग रहे होंगे, ये भी अंडरलाइन कीजिएगा, ये जरूरी नहीं कि वो देगा जो तुम मांग रहे होंगे। जैसे आप अपने छोटे बच्चे को वो चीज नहीं दिलाते, हर चीज जो वो मांगता है वो चीज दिलाते हो जो उसके लिए फायदेमंद होती है। आप सिर्फ प्यार करो उससे, फिर देखो वो चीजें दिलाएगा जो वास्तव में तुम्हारे लिए चाहिए। तो ये प्यार की चेकिंग हुई। अब अगली चेकिंग पर चलते हैं, योग की चेकिंग, कि मेरा योग कैसा है। कई बार हम सेमी निंद्रा को ही योग समझ लेते हैं। आंखें बंद करके योग करना बिल्कुल गलत योग है, ये श्रीमत के विरुद्ध योग है। मुरलियों में आया है स्पष्ट कि बच्चे तुम्हें आंखें खोल करके योग करना है। इसमें भले थोड़ा सा दिक्कत हो, परंतु योग की विधि भी वैसी जैसी भगवान ने सिखाई है। अगर सिद्धि वैसी चाहते हो राजयोग की, तो राजयोग को विधि से करना है। विधि में अपनी मनमत मिला ली, आधी आंखें बंद आधी आंखें खोली, आधे झूम रहे हैं आधे ढीले बैठे हैं, तो उसमें रिजल्ट्स नहीं आते हैं। इसलिए योग कैसा है मेरा, देखिए अभी जिन्होंने अमृत वेला करना शुरू किया सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में, हम देख रहे वंडरफुल चेंजेस, हमारी सोच से भी पार के चेंजेस बाबा करवा रहा है आत्माओं में। जिन्होंने वर्षों में 4 बजे का योग नहीं किया, आज वो 2 बजे से पहले लाइन लगाए खड़े होते हैं, ये क्या है। अब विधि मिल रही है उनको, पहले शून्य होके बैठ जाते थे, आधे नींद में बैठ गए, आधे नींद को योग समझ रहे हैं, आधे कहते हैं हमें हिलाओ मत, हम ठीक बैठे हैं, क्योंकि उसमें भी आनंद आता है, सेमी निंद्रा में भी आनंद आता है। वो कहते हैं हमें हिलाओ मत, तुम हमें मत हिलाओ, हम तुम्हें भी नहीं हिलाएंगे। ऐसे कई, सभी नहीं, जो आंखें बंद करके बैठते हैं, श्रीमत प्रमाण नहीं है। मुरली पढ़ लीजिए, योग की चेकिंग कीजिए, योग की विधि ठीक नहीं है तो रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे। जो हम स्वमान ले रहे आंखें बंद करके, मैं शांति के सागर की संतान, तो वास्तव में आपको वर्षों तक शांति की ऊर्जा नहीं मिलेगी, टेम्परेरी मिलेगी सिर्फ। परमानेंट संस्कार परिवर्तन करने की ऊर्जा केवल आंखें खोल कर बैठते हैं जब, और फिर तीसरे नेत्र से दिखाई दे आत्मा, दिखेगी आप थोड़ा अभ्यास करेंगे। कोई कोई 2 दिन 4 दिन 10 दिन अभ्यास करके बोले हमें तो दिखती नहीं, आप सिर्फ शुरू में नियमों पर विश्वास करो, जैसे पढ़ाई में भी नियमों पर विश्वास किया ना, ग्रेजुएशन कर लोगे 10th के बाद या 12th के बाद, हमने ब्रांचेस सिलेक्ट की, 10th के बाद अगर साइंस ले लोगे तो ये मिलेगा, कॉमर्स ले लोगे तो ये मिलेगा, तो हमने पहले बिलीव किया कि भाई इस ब्रांच में ये मिलेगा। तो यहां तो नियम है कि अगर योग करोगे आंखें खोलकर तो तुम्हें वंडरफुल प्राप्तियां होंगी, पर करोगे ही नहीं तो प्राप्ति कैसे हो। इसलिए चेकिंग करो योग कैसा है। फिर ये हो गया शरीर का पोस्चर, अब हो गया अंदर का, मन का। अगर अंदर प्रेम की वार्तालाप नहीं चल रही, बाबा के साथ रूह रिहान नहीं करते, बिंदी बन के बैठ जाते हैं, खाली चीज कभी भी टिकती नहीं है, अधजल गगरी छलकत जाए, टेम्परेरी तो आप किसी को भी ट्रेन कर सकते हो, लेकिन हमें मन को सिर्फ ट्रेन नहीं करना, एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रूप में ट्रेन तो हठ योगी कर देते थे अपने आप को, एक टांग पर खड़े रहते थे, घंटों दिनों खड़े रहते थे, वंडरफुल ट्रेनिंग थी, बिना वस्त्रों के हिमालय में बैठ जाते थे, दैट वाज अ ट्रेनिंग, हठ योग था वो। लेकिन यहां सहज योग है, आपको आंखें खोल कर बैठे हैं लेकिन मन आपका विचलित नहीं, वो बिना आज्ञा के नहीं जा रहा है। आपका जो पेट एनिमल होता है, आप दरवाजे खुले भी हों वास्तव में तो भी वो कहीं नहीं जाएगा, जो आज्ञाकारी वफादार पेट एनिमल है वो दरवाजे खुले भी हों तो नहीं जाएगा। तो ये दरवाजे खुले भी होंगे तो भी ये कहीं नहीं जाएगा, ये आपका आज्ञाकारी हो गया है, आपने इसको भीतर देखना सिखा दिया है। ये सिखा दो इसको कि बाहर है क्या, किधर भागता है, विनाशी जगत है, विनाशी दुनिया है, ना किसी को कुछ मिला इसमें परमानेंट, ना मिलने वाला है, ये पाठ पक्का करा दो और बस भीतर की तरफ आत्मा के प्रकाश में टिका दो। तो ये चेकिंग कीजिए कि योग की विधि करेक्ट है क्या, ये कई बार चेक नहीं करते हम और रिजल्ट नहीं आते, इसलिए क्रोध चिंता ईर्ष्या द्वेष ये दूर नहीं जाती है, थोड़े थोड़े चेंज हो गए हैं पर बिल्कुल अंदर से साफ हो जाए, मोह नष्ट हो जाए। ठीक है, अगली चेकिंग है अपनी कमजोरियों की चेकिंग। हमने कई बार देखा है कि जब किसी की आयु 30-35 साल की होती है ना, उसके बाद बीमारियां ज्यादा शुरू होती हैं। तो पहली बार जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक दिन वो बताता है कि आपका बीपी ज्यादा है, अभी 30 साल में किसी ने बताया नहीं था, चेक भी नहीं कराया था, कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था, अब अचानक डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा बीपी बढ़ गया है। तो उस व्यक्ति को ये लगता है, वो बाहर आके बोलता है डॉक्टर की मशीन खराब है, उसको विश्वास ही नहीं होता है कि मुझे बीपी हो सकता है। पहली बार मशीन बदल के देखेगा, डॉक्टर बदल के देखेगा, एक दिन विश्वास करेगा ही कि नहीं तुझे बीपी है। ऐसे हम कई बार अपनी कमजोरियों की चेकिंग को जोश और बाबा के प्रेम के पर्दे के नीचे ऊपर से बोल रहे हैं अच्छी चीज, लेकिन अंदर से वो कीटाणु जो हैं वो धो नहीं रहे। जैसे अभी पूछ लिया जाए क्या मोह, और ये हम 6 महीने वालों की बात नहीं कर रहे, 6 महीने वाले तो बच्चे हैं बाबा के, साल वाले छोटे बच्चे हैं, 2 साल वाले भी छोटे ही कहेंगे, अभी तो वो सीख रहे हैं क्या है योग, ये भगवान है क्या वास्तव में। हम तो बात 15-20 साल वालों की कर रहे हैं। जिन्होंने बहुत बार चिट्ठियां लिखकर वायदे करके बाबा के कमरे में बक्से में भी डाले होंगे, बस आज के बाद आप के अलावा कोई नहीं बाबा मेरा, लेकिन आज पूछ लीजिए क्या मोह नष्ट हो गए। जब तक बात दिल में ना लगे परिवर्तन होगा ही नहीं। पंद्रह साल हो गए, 20 साल हो गए भगवान की वाणी सुनते हुए, क्यों नहीं नष्ट हुए मेरे मोह, मेरा क्रोध नष्ट क्यों नहीं हुआ। ये विचार का मुद्दा है, ये रियलाइजेशन का मुद्दा है, चेकिंग का मामला है। क्यों, कितने वर्ष और लगेंगे शांति के सागर को पाकर, फिर दूसरों को हम कैसे कहते हैं कि यहां शांति मिलती है। जब 20 साल में मेरा क्रोध दूर नहीं हुआ, 15 साल में नहीं दूर हुआ, तो मैं कैसे कह सकती हूं कि यहां पर शांति मिलती है। वो तो हर सत्संग में मिलती है, आपको दूसरे सत्संगों में भी एक से एक धैर्यवान शांति के दूत मिल जाएंगे, हमसे भी ज्यादा। हमारे पास तो फिर भी ज्ञान का, सुप्रीम ज्ञान का कुछ अहम आ गया है, कमजोरियों की चेकिंग बहुत जरूरी है। रोज पॉइंट आता है बाबा का, बाबा कहते बच्चे ममत्व नहीं रखो, दीदी पूछती है बाबा ने क्या कहा, हाथ उठा के बोलते हैं दीदी आज बाबा ने कहा तुम्हें किसी में ममत्व नहीं रहना चाहिए। इतना ऊपर ऊपर से बोल देते हैं जैसे कि बोल के भगवान को राजी कर दिया। बाबा ने बोला है मुरलियों में कि जब तक बाप हूं सब देखता हूं, सब जानता हूं, कहता कुछ नहीं हूं क्योंकि बाप हूं, बाप के रूप में धर्मराज का रोल मिक्स नहीं करता हूं, लेकिन आज बाप के रूप में हूं तो आशीर्वाद वरदान करुणा रहम दया कृपा का हाथ है। एक दिन अब धीरे धीरे ऐसे हो रहा है, जिस दिन धर्मराज हो जाएगा उस दिन अगर कहोगे बाबा, बाबा गया अब हिसाब सुना, मुरली में कहा हम ये दिखाएंगे कि हम क्या कहते थे तुम क्या करते थे। वर्षों से पॉइंट सुनते सुनते पर उन पॉइंट्स की गहराई में नहीं जा रहे, छूटता नहीं है। ये तो भक्ति वाले भी कहते थे छूटता नहीं है, गृहस्थी में है, हमारे पास भी अपनी क्वालिटी के बहाने हैं, बहाने ही हैं, वो वरना भगवान मिल गया हो, अच्छा भगवान मिल गया इसकी गारंटी करते 100%। जब इतनी बड़ी प्राप्ति हो गई फिर भगवान मिल गया तो ये विनाशी देहधारी फिर बेटा हो पोता हो उनका ममत्व तो नहीं, जिम्मेवारी अलग चीज होती है। जिम्मेवारी के पर्दे के पीछे मोह को छुपा के नहीं रखने का, वो जिम्मेवारी भी हम आपको मुरली सुना देंगे। हवा कहते जिम्मेवारी भी अगर वो पैदा करती है ना मोह, वो जिम्मेवारी भी तुम्हारी नहीं, तुम सिर्फ बाप को याद करो, बाकी काम बाप देख लेगा। जिम्मेवारी है देखना पड़ता है, नहीं चिंता करनी नहीं पड़ती। चिंता बाबा ने कभी नहीं कहा करने के लिए, कर्तव्य करने के लिए बाबा ने कहा, तोड़ निभाने के लिए बाबा ने कहा, पहले अंदर से मन तोड़ो, आत्मा बन के सभी से तोड़ो पहले मन। 14 साल बाबा ने मन तोड़वाया सभी का, नाम तक भुलवा दिए, अपने लौकिक देह के नाम भूल गई दादियां, माता पिता के नाम भूल गई, शक्लें भूल गई। वो समय अलग था, पर हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अंदर से तार तो छोड़ दें, तार तो एक से जोड़ लें। तो एक एक कमी को सूक्ष्म रूप से बैठ के चेक करना है। फिर आगे चेकिंग समय की, एक एक चीज रियलाइजेशन की है इसमें, समय की चेकिंग कि वक्त कितना चल रहा। कल प्रश्न पूछा क्या वक्त के हिसाब से चल रहे हम, तो मैक्सिमम का जवाब आया था नहीं। तो अब इसमें पक्का करो कि अब सो, ये पक्का कर लीजिए, पहले वाले में प्यार वाले में मैं तेरी, ठीक है, योग वाले में आंखें खोलकर योग करना, एक एक पॉइंट सभी में नोट कर लो, कमजोरी वाले में पर्दे के पीछे छुपा के नहीं रखना है, ममत्व त्यागना है। अब चेकिंग, समय की चेकिंग कि समय कितना है, समय बहुत कम है, इसलिए इसके लिए क्या करना है, हर घड़ी ये सोचो मेरे अंदर जागृति बढ़ती जा रही, मेरे अंदर जागृति बढ़ती जा रही है, मैं और जागती जा रही हूं, मैं और जागती जा रही हूं। अपने आप से केवल इतनी बात करते रहें, अब घर जाना है, अब मेरी आंख, शंकर जी की तीसरी आंख पूरी खुली तो विनाश हुआ, हमारी तीसरी आंख पूरी खुलेगी, जिसकी खुलेगी उसका अज्ञानता का विनाश हो जाएगा, विकारों का विनाश हो जाएगा। जब तक वो आंख टिमटिमाएगी तब तक स्थिति भी टिमटिमाएगी, डगमगाएगी। इसलिए समय बहुत कम है, इसका टेंशन नहीं, अटेंशन रखना है, एक एक सेकंड यूज करना है, धैर्यवान होके चलना है अभी, क्योंकि अब आगे आने वाला समय आज से ज्यादा टेंशन पैदा करेगा। अगर जनवरी में भी बच्चा जाग गया तो 2 महीने में अच्छे मार्क्स लेने की मार्जिन है, लेकिन अगर फरवरी लास्ट में जगता है फिर उसके अंदर टेंशन डिप्रेशन आता है। अगर पुरुषार्थ की ये घड़ियां भी हमने बिता दी फिर लाजमी टेंशन होना है और डिप्रेशन भी होना है। इसलिए अब समय वेस्ट नहीं, नौ अमृत वेला मिसिंग, नौ मुरली मिसिंग, धारणाओं को इजी मत लीजिए, पवित्रता की धारणा हो, आप काउंसलिंग लीजिए और मदद लीजिए, फिर बाबा से मदद लीजिए और ठीक कीजिए उसको। चेकिंग कर्म बंधनों की कि मेरे अंदर मेरे बंधन कहां कहां बंधे हुए हैं, बड़े आराम से बैठ करके खुद को आत्मा समझते हुए मस्तक में बैठकर जिस आत्मा को अब वापिस जाना है, लेकिन वापिस जाने में ये धरती और धरती के इस संसार से धरा से कुछ तार जुड़े हुए हैं, जब तक वो तार टूटेंगे नहीं, और अंतिम तार इस देह से भी है, कहीं इसको चेक ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ दूर देखते हैं, मोटा मोटी कि बेटे में भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, मेरा किसी में मोह नहीं है। फिर आत्मा इसमें बैठी है, अब इसको छोड़ने का अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास, वो छोड़ना बड़ा आसान है। दोस्तों को छोड़ना और आसान है, रिश्तेदारों को छोड़ना थोड़ा और आसान है, परिवार वालों को छोड़ना थोड़ा और, उनसे थोड़ा मुश्किल, लेकिन इसको छोड़ना सबसे मेन परीक्षा आएगी। इसलिए कर्म बंधनों को देखना है यहां बैठ के कि कहां कहां तार जुड़ी है। अच्छी तरह से चेक करोगे कर्म बंधन तो फिर एक एक को ऐसे, इसके लिए संकल्प है अब मुझे नए कर्म बंधन नहीं बनाने हैं। मुंह चुप हो जाएगा आपका, क्योंकि गलत बोले तो आपका कर्म बंधन बन गया, चुप हो जाएगा। शांति के मार्ग भगवान दिखाएगा आपको, बहुत अच्छे मार्ग हैं शांति के और बहुत ज्यादा सफलता है उसमें। आप तो एक छोटे से काम को बनाएंगे क्रोध करके या बोल करके, वो आपके लिए कोई बड़ी प्राप्ति करा देगा। आप उसके मार्ग पर कदम रखकर देखो, उसकी श्रीमत पर। तो कर्म बंधन कहां कहां है, फिर जैसे मोर ध्वज राजा ने आरे से चिरवाया, उन्होंने दिखाया अपने बेटे को आरे से चिरवाया, यहां बेटे को नहीं कर्म बंधनों को आरे से काटना है, योग की आरी चलानी है और उसको काटना है। तो इस प्रकार से हमें डीप चेकिंग करके, जैसे अभी बैठे हो, अभी हमको आपकी चैट की स्पीड से पता लग रहा है कि धैर्य से बैठे हो, यही होना चाहिए। इतना सुंदर विषय चल रहा हो और चैट पर लगे रहते हैं कहीं भाई बहन, नो, सुनिए क्या बताया जा रहा है, रियलाइज कीजिए क्या अनुभव कराया जा रहा है। यहां जब पूछा जाए केवल तब इसमें लिखिए, आज अच्छा है, ज्यादा स्पीड नहीं, चलेंगे 2-3 मिनट बैठेंगे, सीधे होके बैठे हैं। अब जो भी बताया अब चेक करें, अपनी मशीनरी कुछ फास्ट हुई या नहीं। और अपने आप से संकल्प करें कि मोटी चेकिंग नहीं करेंगे, बड़ी सूक्ष्म चेकिंग करेंगे, जहां स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है वहां विद्यार्थी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो अपनी स्ट्रिक्ट मार्किंग कीजिए, देखिए सच्चाई की चेकिंग से आपके भीतर कुछ करने का उमंग पैदा होता है। ओम शांति। अभी हमारा अगला विषय है अमर भाई जी का, पोजीशन में रहने से अपोजिशन समाप्त। समय है, लॉकडाउन है, शुक्रिया है कोरोना का, लॉकडाउन का जो वक्त मिल रहा है। तो अभी हम बुक क्लास भी सुनेंगे। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं, आज शाम को भी मिलेंगे नुमा शाम में। और ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को लाभ दें इन विधियों का जो बाबा सिखा रहा है, और आओ मिल करके अब विश्व कल्याण के कार्य को तीव्र गति। ओम शांति। धन्यवाद।